શબ્દાર્થ એ જો લોગ તો લેકિન માં મુઝકો રુદ્રગીત દ્વારા સાયં સંધ્યા સમય પ્રાતઃકાલ સમાહિતા સાવધાન રહકર અસ્તુવંતે પ્રાર્થના કરતે હૈ અહમ મૈં કામબરાન ઇચ્છાઓ કો પૂર્ણ કરને કે લીએ સમસ્ત બર અભીષ્ટ વરદાન દાસે પ્રદાન કરુંગા પ્રજ્ઞામ બુદ્ધિ ચ ભી શોભનામ દિવ્ય. અનુવાદ એમ તાત્પર્ય શ્રીલ પ્રભુપાદજી કે દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જો લોગ શિવજી દ્વારા પ્રણીત સ્તુતિ સે પ્રાતઃ તથા સાયંકાલ મેરી પ્રાર્થના કરેંગે ઉન્હે મેં સમસ્ત બર પ્રદાન કરુંગા. ઇસ તરહ વે અપની ઇચ્છાઓ કો પૂરા કરને કે સાથ સાથ સદબુદ્ધિ ભી પ્રાપ્ત કર સકેંગે. દોહરાયેંગે જો લોગ શિવજી દ્વારા પ્રણીત સ્તુતિ સે પ્રાતઃ તથા સાયંકાલ મેરી પ્રાર્થના કરેંગે ઉન્હે મેં સમસ્ત બર પ્રદાન કરુંગા. ઇસ તરહ વે અપની ઇચ્છાઓ કો પૂરા કરને કે સાથ સાથ સદબુદ્ધિ ભી પ્રાપ્ત કર સકેંગે. તાત્પર્ય સદબુદ્ધિ કા અર્થ હૈ ભગવાન કે ધામ કો વાપસ જાના. ઇસકી પુષ્ટિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કે 10 અધ્યાય કે 10 શ્લોક મેં કી ગઈ હૈ. તેસામ સતત જુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિયોગમ તમ એ નમામ ઉપયાંતિ તે. જો નિરંતર મેરી ભક્તિ કરતે તથા પ્રેમપૂર્વક મેરી પૂજા કરતે હૈ ઉન્હે મેં બુદ્ધિ પ્રદાન કરતા હું જિસે વે મેરે પાસ આ સકે. જો અપની વિવિધ ઇચ્છાઓ કી પૂર્તિ કે ઉદ્દેશ્ય સે ભગવાન કી પ્રાર્થના કરતે હૈ ઉસે યહ જાન લેના ચાહીએ કે ઇચ્છા કી ચરમ પૂર્તિ ભગવાન કે ધામ કો વાપસ જાના હૈ. ઇસ શ્લોક મેં ઇંગિત કિયા ગયા હૈ કે જો રાજા પ્રાચીન બરહિષદ કે પુત્ર પ્રચેતાઓ કે કાર્યકલાપો કા સ્મરણ કરતા હૈ ઉસકા કલ્યાણ ઓર ઉધાર હોગા. અતઃ રાજા કે ઉન પુત્રો કે લીએ ક્યા કહના જો ભગવાન સે પ્રત્યક્ષ જુડે હુએ હૈ. પરંપરા પદ્ધતિ કી યહી રીતિ હૈ યદિ હમ આચાર્યો કા અનુસરણ કરતે હૈ તો હમે અપને પૂર્વર્તિયો જૈસા લાભ પ્રાપ્ત હોતા હૈ. યદિ કોઈ અર્જુન કે નિર્ણયો કા અનુસરણ કરતા હૈ તો સમજો કે વો ભગવાન સે ભગવદ્ ગીતા સુન રહા હૈ. પ્રત્યક્ષ ભગવાન સે ભગવદ્ ગીતા સુનને તથા અર્જુન જૈસે મહાપુરુષ સે સુનને કા દોનો કા એક હી લાભ હોતા હૈ. જિસને પહેલે ભગવદ્ ગીતા શ્રી ભગવાન કે મુખ સે સુની થી અનુસરણ કરને મેં કોઈ અંતર નહીં હોતા. કુછ મૂર્ખ તર્ક કરતે હૈ કે ઇસ સમય કૃષ્ણ ઉપસ્થિત નહીં હૈ ઇસલિયે ઉનસે પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ પ્રાપ્ત નહીં કિયા જા સકતા. એસે મૂર્ખ યહ નહીં જાનતે કે ભગવદ્ ગીતા કે પ્રત્યક્ષ સુનને તથા ઇસકે પઢને મેં તબ તક કોઈ અંતર નહીં હૈ જબ તક ઇસે ઉસી રૂપ મેં સ્વીકાર કિયા જાતા હૈ. તો વહ ભગવદ્ ગીતા કે રહસ્યો કો નહીં સમજ સકતા ભલે હી લૌકિક દૃષ્ટિ મેં વહ કિતના હી બડા વિદ્વાન કેવ ન હો. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરન્મીલિતમ જૈન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ જૈન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરવ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરૂન વૈષ્ણવાશ્ચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे श्री श्री राधा रास बिहारी जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की निताई गौर सुंदर की इसके पीछे के दो श्लोकों में श्री भगवान प्रचेताओं के पूर्ण समर्पण और उनके प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देते हैं और उनको उपदेश देते हैं। प्रथम श्री भगवान कहते हैं कि व्रणम वृणिध्व भद्रमो इवम मे नृपनंदना सौहार्देन पृथक धर्म तुष्टोयम सौहृदय नवः। श्री भगवान कहते हैं कि हे राजा पुत्र हे राजपुत्रों मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी ये कहीं कार्य भक्ति में लगे हो मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण करना चाहता हूँ। अब तुम जो वर मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्राचीन बरही सत के जो पुत्र थे 10 पुत्र थे उन सबों को एक ही नाम से जाना जाता था प्रचेता। प्रचेता का अर्थ होता है जिसकी चेतना भगवान में लगी हो। प्रकृष्ट चेत इति प्रचेता जिनकी चेतना प्रकृष्ट हो जिसका उद्देश्य जो है भगवान को प्रसन्न करना हो जिसकी चेतना संसारिक उपलब्धि लोकेशणा वितेषणा पुतेषणा और संसार में मान प्रतिष्ठा या भोग की कामना इससे ऊपर उठ करके भगवान को प्रसन्न करने की केवल तीव्र इच्छा होती है तो उसके बुद्धि को प्रचेता कहते हैं। जिसकी बुद्धि प्रखर रूप से या प्रकृष्ट रूप से भगवान में ही केवल लगी हो तो प्रचेताओं को प्रचेता सभी एक ही कार्य में लगे थे। सबका एक ही ऑक्यूपेशन था भगवान को प्रसन्न करना। अनेक होकर के भी उनका उद्देश्य एक था। अनेक रूप में होते हुए भी एक रूप में थे। अनेक बार जन्म लिए थे फिर भी एक साथ ही उनकी गणना की जाती है। नाम से रूप से विचार से और कार्य से एक स्तर पर थे इसलिए उनको एक नाम से ही पुकारा जाता है प्रचेता। और उनका उद्देश्य भी परम उद्देश्य है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि दो उद्देश्य होता है व्यक्ति एक लौकिक उद्देश्य होता है और एक पारलौकिक होता है। लौकिक जो देह के स्तर पर जुड़ा रहता है और जो आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ा रहता है उसको पारलौकिक बोलते हैं। यह जगत लोक के वृत्ति से जो लोग कार्य करते हैं वो लौकिक धर्म का पालन करते हैं, उसको भी धर्म कहते हैं। एक लोक धर्म होता है और एक वेद धर्म होता है। कभी कभी लोक धर्म भी वेद धर्म को की ओर इशारा करता है या वेद वैदिक धर्म को के कार्यों की पुष्टि करता है। जैसे लोक में है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये लौकिक धर्म है, लेकिन यही आध्यात्मिक भी हो जाता है। जैसे प्रचेता अपने पिता की आज्ञा को मान करके तपस्या करने के लिए जाते हैं, पितुः आज्ञा, पीछे का श्लोक में वर्णन है किस तरह से प्रचेता अपने पिता के आदेश का पालन करके समुद्र के तट पर जा करके समुद्र में पानी के अंदर 10,000 वर्ष तक तपस्या किए। 10,000 वर्ष तक मैत्रेय ऋषि ने कहा कि राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। पिता का आदेश भी कोई गलत नहीं था। पिता का आदेश अगर भगवान को प्रसन्न करना हो तो वो आदेश जो है ग्रहणीय है, माननीय है, मान लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जो अपने पिता के आदेश से लौकिक और पारलौकिक दोनों धर्मों को तुष्ट किए हैं और अंत में भगवान को भी तोष किए हैं। हरितोषनम, जैसे राजा पुरु जो है अपने पिता के आदेश से अपनी युवा अवस्था को त्याग दिए, अपने पिता को दे दिए। जजाति को जब साप हुआ, शुक्राचार्य ने साप दे दिया कि तुम वृद्धा अवस्था को प्राप्त करोगे, तो बाद में जजाति अपने ससुर शुक्राचार्य के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि आप किसको श्राप दे रहे हैं, इस श्राप से आपकी पुत्री को ही हानि होने वाला है, आपका दामाद बूढ़ा हो जाएगा और आपकी पुत्री जीवती है देवयानी, तो आप विचार किए नहीं। कभी कभी कोई श्राप या वरदान देता है तो आवेश में दे देता है, विचार नहीं करता है, उसको फल के ऊपर विचार नहीं करता है व्यक्ति कि ये वर देने में क्या लाभ है क्या हानि है। शिव जी भी विचार नहीं करते हैं। शिव जी के पास भी जो जाता है जो मांगता है वो दे देते हैं। ये आशुतोष हैं, औढ़र धानी। बाद में उसका हानि लाभ विचार करते हैं। जो भक्त होते हैं वास्तव में इतने उदार होते हैं कि वो विचार नहीं करते हैं कि इससे हमारा क्या हानि होने वाला है, जो मांगता है वो दे देते हैं। तो कभी कभी आवेश में भी अपना हानि लाभ का विचार नहीं होता है। तो शुक्राचार्य साप दे दिए जजाति को कि वृद्ध हो जाओ। जब जजाति महाराज ने उनको बताया कि वास्तव में वृद्धा अवस्था में आपकी पुत्री हमारे साथ कैसे रह सकती है, किसी पुरुष की युवावस्था चली जाए और उसकी पत्नी जीवती हो तो पत्नी उसके साथ कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती है, तो आपकी पुत्री कुमार गामिनी हो जाएगी तो इसका कौन दोषी होगा। वेद में या लोक में लोग का यह धर्म है कि स्त्री को अपने पति के अनुगामिनी होना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में हमारे साथ कैसे रह सकती है? नहीं रह सकती है। जैसे रात्रि काल में सूरज दिखाई नहीं देता है, सूरज का भी एक प्रहर होता है और चंद्रमा का भी प्रहर होता है। वो समय में ही समय जब होता है सूरज का, तब सूरज सूर्योदय होता है, और सूरज का जब अस्त होने का समय होता है तो फिर रात्रि आती है। दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिवस होता है। तो युवावस्था के बाद वृद्धावस्था का आगमन होता है, लेकिन आपने तो युवावस्था में ही मुझे वृद्धावस्था का साप दिया है। जो समय अभी वृद्धावस्था का नहीं है, तो शुक्राचार्य बहुत विद्वान थे, असुरों के गुरु हैं, शास्त्र में का मीमांसक हैं, वेदों के निर्णय को जो बताते हैं, धर्म के सिद्धांत को की व्याख्या करते हैं, तो शुक्राचार्य को ग्लानि होने लगी। उनको बहुत खेद हुआ कि वास्तव में मैंने जो साप दिया है इस साप के अनुकूल जजाति नहीं है। तो बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, एक उपाय कर सकते हो, आप इस वृद्धावस्था को एक्सचेंज कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो, ददाति प्रतिग्रहणाति। आजकल वृद्धावस्था को अगर एक्सचेंज करना हो तो बहुत पैसा बना सकते हैं लोग इसका बहुत मूल्यांकन होगा बाजार में, ये आजकल ऐसा कोई कर नहीं सकता है। अगर ऐसा करना हो तो बहुत लोग युवावस्था ही पसंद करेंगे, वृद्धावस्था को दे सकते हैं। तो शुक्राचार्य के पास ऐसी सिद्धि थी, ऐसा मंत्र था कि वो कर सकते थे, तो उन्होंने उपाय बताया कि इस वृद्धावस्था को आप अगर कोई लेना चाहता है तो दे सकते हो, और कौन ले सकता है, आप अपने पुत्रों को दे सकते हो। तो जजाति महाराज पुनः अपने राजधानी में आते हैं, अपने पुत्रों से कहते हैं कि तुम्हारे नाना ने मुझे वृद्धावस्था का साप दिया है, ये आप लोग ले लो, अपनी युवावस्था को मुझे दे दो। तो सर्वप्रथम अपने बड़े पुत्र के पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अब वृद्धावस्था देना चाहते हैं, युवावस्था लेना चाहते हैं, किसको अपनी युवावस्था प्रिय नहीं है? आप संसार को भोगने के लिए हमारी युवावस्था को चाहते हैं, तो क्या हम लोग संसार का भोग नहीं कर सकते हैं? तो श्लिष्ट भाषा में उनके पुत्रों ने उनको गाली दिया कि आपको विचार करना चाहिए कि अभी भी आप में भोग की कामना है। अभी तो आपने बहुत सारा संसार के भोगेश्वर को आपने भोग लिया है, लेकिन हम लोगों ने तो अभी संसार को भोगा नहीं है। फिर जदु महाराज के पास, तो जदु महाराज कहे कि हे पिताश्री, अगर आप हमारी युवावस्था से आप अभी भी संसार के विषय वासनाओं को भोगना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अपनी युवावस्था को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस युवावस्था से भगवान का भजन करना चाहता हूं। हरितोषणम, भगवान को मैं तुष्ट करने के लिए इस युवावस्था को रखना चाहता हूं, आपको नहीं देना चाहता हूं। मानस देह गेह जे किछ उमर, आपके पास चाहे शारीरिक सौंदर्य है, शारीरिक बल है, शारीरिक शरीर से संबंधित ऐश्वर्य है, शरीर से संबंधित जो कुछ भी है जो भगवान की सेवा में लगा देता है तो ठीक है। तो जदु महाराज का अपने पिता जी को एक तरह उपहास किए। शास्त्र के दृष्टि से ठीक है कि जो भगवान की सेवा करना चाहता है तो अपनी युवा अवस्था को न दे किसी को। संसार में अपनी युवा अवस्था को लोग स्त्री को अपने संबंधी को अपने परिवार के पोषण के लिए इसको खर्च कर देते हैं। इस जवानी को संसारिक भोग उपासनाओं में धन अर्जन करने में लौकिक विद्या अर्जन करने में इस जवानी को लगा देते हैं। लेकिन जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी जवानी को लगा देता है तो श्रेयस्कर है। तुलना किया जाए जैसे भगवान श्री राम अपने पिता के आदेश से जंगल में गए। पिता का आदेश प्रत्यक्ष नहीं था लेकिन फिर भी पिता के आदेश का पालन करने के लिए वन में गए। 14 वर्ष वनवास की यात्रा किए। वो भी कह सकते थे कि नहीं मैं एक आपकी जो पत्नी है उसकी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता हूं। आप कैकेयी के प्रसन्नता के लिए ऐसा करते हैं मैं बन नहीं जा सकता हूं। आपने मुझे राज देने के लिए वचन दिया है कह सकते थे। लेकिन नहीं, अपने पिता के मनोभीष्ट को समझ कर भगवान श्री राम स्वतः वन में चले गए जबकि दशरथ जी का आदेश नहीं था। तो यहां पर आचार्य लोग कहते हैं कि जो परम आज्ञाकारी पुत्र होता है या उत्तम कोटि का जो पुत्र होता है अपने पिता के मनोभाव को समझ करके ही कर देता है, पिता को कहना नहीं पड़ता है। और जो उत्तम कोटि का शिष्य होता है वह भी गुरु के मनोभाव को ही समझ कर देता है और जो मध्यम कोटि का गुरु के कहने पर करता है और जो कनिष्ठ कोटि का होता है गुरु के कहने पर भी नहीं करता है। तो पिता भी गुरु होते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देव माने भगवान श्री कृष्ण और गुरु देव द्विज गुरु, द्विज माने भक्त, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ भगवान और भगवान का भक्त और जो भगवान से जो संबंध कराता है गुरु, गुरु भगवान से मिलाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जो भगवान से साक्षात्कार कराते हैं वही भगवान के समान सम्माननीय है। देव द्विज गुरु फिर प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब हमारे माता पिता, पितर पूर्वज, प्राज्ञ मतलब जो हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं या हमारे पूर्ववर्ती जो वंश के लोग हैं, माता पिता दादा दादी नाना नानी जो भी हमारे हमसे ऊपर के जो भी पीढ़ियां हैं उनको प्राज्ञ कहते हैं। पूजनम उनकी पूजा करनी चाहिए मतलब उनकी आज्ञा को मान्य करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, वो भी सम्माननीय है। और उससे क्या होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई भगवान और भक्त और गुरु और माता पिता और अपने आचार्यों की आज्ञा के अनुसार या उनका अनुसरण करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे प्रचेता जो है अपने पिता के आदेश का अनुसरण किए तो भगवान प्रसन्न हो गए और उनको वर प्रदान किए भगवान वर प्रदान किए कि प्रचेताओं के जो कार्यकलापों का जो स्मरण करेगा तो उसे उसके भाइयों में मैत्री रहेगी और समस्त प्राणियों के प्रति भी सौहार्द रहेगा। सौहार्द देना, सब प्राणियों के प्रति मित्रता होगी या सभी प्राणी उसे मित्रता करेंगे और भाइयों में भी मैत्री रहेगा। भगवान ऐसा वर क्यों दिए? क्योंकि प्रचेता अनेक होते हुए भी एक थे और सब में मित्रता थी, सभी मित्रवत कार्य करते थे और एक उद्देश्य सबका था, भगवान को प्रसन्न करना। उन्होंने आपस में कभी किसी बात के लिए मतभेद नहीं हुआ। जैसे राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि प्रचेता 10 थे और 10 एक साथ भजन करते थे, लेकिन किसी में यह नहीं हुआ कि नहीं ये ऐसा मंत्र नहीं जपना चाहिए, ऐसा जपना चाहिए या तुम मौन जपते हो बोलकर जपना चाहिए या तुम जपते समय सीधा नहीं बैठते हो, कभी कभी आरोप प्रत्यारोप आपस में नहीं हुआ या तुम्हारा आसन बहुत बड़ा है छोटा होना चाहिए या तुम दो आसन लिए हो एक लेना चाहिए। उन दोनों में इतना समयक व्यवहार था, समयक आहार, समयक व्यायाम, समयक आजीविका, समयक विचार और समयक उद्देश्य सब एक समान था। ऐसा लगता था कि अलग अलग होते भी सबका एक विचार, अगर कोई एक चीज सोचता है तो लगता कि सब वही चीज सोच रहे हैं, जैसे मैं कुछ सोचता हूं आप कुछ भिन्न सोचते हैं, एक कुछ सोचते हैं वो आपसे भिन्न सोचते हैं, मैं कुछ सोचता हूं आपसे भिन्न, भिन्नता है, लेकिन उनों के विचार में भी एकता थी, एक साथ एक ही विचार करते थे सब और एक साथ एक ही कार्य करते थे, माने सबका विचार और मन एक है, सबका विचार एक साथ एक ही विचार होता था। स्नान करना है तो सब एक साथ स्नान करते थे, रुद्र गीत का पाठ करना सब एक साथ पाठ करते थे, इसलिए उनको एक ही नाम से संबोधित किया जाता है प्रचेता, अलग अलग नाम नहीं आया है। लोग कहते हैं कि अनेकता में भी एकता है, अनेक होते भी एक थे, वो संगठित थे, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर कोई आपस में बहुत सौहार्द पूर्वक रहता है और उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है सबका और सब में मिलजुल कर कार्य करने का ये होता है कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहायता करना, तो इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसमें यही बताया गया है, जबकि ये लौकिक चीज है, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करना। लोग बोलते हैं कली युगे संघे शक्ति, कली युग में संघ में शक्ति है। जैसे महाप्रभु भी, महाप्रभु कहें कि भक्त संगवास, भक्त अगर भक्त के साथ में भक्ति करता है ऑपरेशन के साथ तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, भगवान सामूहिक कीर्तन से जल्दी प्रसन्न होते हैं। सामूहिक कीर्तन मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग डफली अलग राग, नहीं, कोई मृदंग अलग बजा रहा है, कोई अलग गा रहा है, कोई अलग करताल बजा रहा है, कोई अलग नाच है, तालमेल के साथ सामूहिक कीर्तन अर्थ होता है सबका एक साथ मेल हो। जैसे जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो कुछ लोग खड़े रहते हैं, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग बिल्कुल मौन ले लेते हैं। तो ये एक कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन का अर्थ है मतलब सहयोग देना, उत्साह देना, जैसे प्रचेता आपस में उत्साह देते थे जैसे जप करने में भी उत्साह होना चाहिए, जैसे प्रचेता जल के अंदर जप कर रहे थे लेकिन सब एक दूसरे को उत्साहित कर रहे थे, ऐसे हम लोग जब जप करते हैं तो कोई कोई ऐसे वृत्ताकार के रूप में एक दूसरे को जागृत करने के लिए, कोई सो रहा है तो उसको उत्साहित करने के लिए, तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता जो है अपने पुत्रों को एक साथ मिलजुल करके कार्य करते हुए देखता है तो पिता प्रसन्न होता है। माता पिता प्रसन्न कब नहीं होते हैं? जब पुत्र उनके आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, अलग अलग उद्देश्य होता है सबका। एक घर है उसमें कई दरवाजे हो जाते हैं, मान लीजिए एक पिता के चार पुत्र हैं और चारों का उद्देश्य अलग अलग है, सब विमुख हैं, कभी दूसरे के साथ आमने सामने मुख नहीं होता है, विचार भी अलग है, उद्देश्य भी अलग है, ये कहीं घर है तो उसमें बंटवारा हो जाता है, तो एक घर में चार दरवाजा हो जाता है, उत्तर दक्षिण पूर्व चारों तरफ दरवाजा हो जाता है, तो घर जो है दरवाजे में ही विभाजित हो जाता है, और खेत का बंटवारा होता है तो मेढ़ में बदल जाता है, अब एक प्लॉट है तो उसमें चार भाई चार विभाजन होता है तो कई मेढ़ में जमीन उसमें चला जाता है, क्यों? कि आपस में मैत्री नहीं है, अगर मित्रता हो तो और मेढ़ बनाने की क्या जरूरत है। यदि है सुजन एक पात 13 जन, यदि सुजन होगा तो एक पत्ते में 13 आदमी को भी एडजस्टमेंट कर सकता है, यदि है दुर्जन 13 पात 1 जन। जैसे हम खाने के लिए हम लोग पत्ता लेते हैं ना, तो एक पत्ते में एक आदमी खाता है, अगर कहीं ऐसी समस्या हो जाए कि ये कहीं पत्ता है और बहुत खाने वाले हैं तो ये कहीं पत्ते में कई आदमी खा सकते हैं, एडजस्टमेंट करना हो तो हाथ में भी लोग खा लेते हैं, करपात्री कुछ नहीं है तो हाथ में भी खा सकते हैं लोग, गांव में चबेना गमछे में खा लेते हैं, गमछे को बांध देते हैं उसमें चबेना लेकर खा लेते हैं, कुछ लोग जमीन पर भी खा लेते हैं। हम अभी वृंदावन गए थे तो हम लोग देखे एक जगह 4-5 ब्रजवासी अमृत लेकर खा रहे थे और हम लोग भी अमृत लेकर खा रहे थे परिक्रमा मार्ग में, तो वो लोग क्या कि अमृत को एक जगह नीचे रख करके नमक भी नीचे रख दिए थे वो लोग और सब एक साथ खा रहे थे, एक प्लेट में 5 आदमी खा लिए, एकता है, विचार सम विचार है, तो एक पात 13 जन यदि है सुजन और 13 पात 1 जन यदि है दुर्जन, लेकिन ये सुजन के लिए कहा गया है, अगर सज्जन होगा तो हर परिस्थिति में वो ठीक ठीक से कार्य करेगा, मेलजोल से कार्य करता है। तो प्रचेता देखिए भाइयों में ऐसी मित्रता थी कि सब अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए, भगवान प्रसन्न हो गए, परम पिता भगवान है, हमारे हम सभी के एक ही पिता हैं भगवान, हम सभी एक ही पिता के संतान हैं, तो पिता कब प्रसन्न होता है? जब उसके पुत्र आपस में संगठित रहते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, और वो झगड़ा करेंगे तो पिताजी कैसे प्रसन्न होंगे? तो परमपिता भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोक में भी, परिवार में भी और जहां भी हम रहते हैं प्रेम परस्पर जरूरी है, प्रचेताओं जैसा। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता है आजकल भाई भाई में ही झगड़ा होता है ज्यादा, भाई भाई में झगड़ा होता है बल्कि दूसरे से दोस्ती होता है, आपस में कलह होता है और मित्रता दूर में होता है। आपस में नहीं पड़ता है, बल्कि भाई भाई में बातचीत नहीं होता है, लेकिन पड़ोस में जाकर बातचीत करता है। अपने भाई के घर में नहीं जाता है, लेकिन दूसरे के घर में जाता है बैठने के लिए, उससे मंत्रणा लेता है, लेकिन भाई से मंत्रणा नहीं लेता है। तो इसे पिता या भगवान नहीं प्रसन्न होंगे। ऐसे देखने में लौकिक है, लेकिन लौकिक ही, लौकिक से ही अध्यात्म में आदमी जाता है। जो लोक है, लौकिक चीज वेद मार्ग को प्रशस्त करता है। तो लोक धर्म भी वेद धर्म को पुष्ट करता है। जैसे भगवान श्री राम अपने भाइयों से बहुत मित्रता करते थे, भगवान श्री राम भरत को कभी ऐसा नहीं कहे कि तुम्हारी मां के चलते ये सब परिवार का विघटन हो गया, तुम्हारी मां बहुत संतापनी थी, इसके चलते पिताजी का देहावसान हो गया और 14 वर्ष हम अपने भाई और सीता के साथ भटके, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, ऐसा कभी नहीं कहे। और भरत जी भी यह नहीं कहे कि अगर राज्य मुझे मिला है तो मुझे राजा होना चाहिए, मन में कभी ऐसा नहीं विचार किया, बल्कि अपने राज्य को भगवान श्री राम के चरणों में एक करके सेवक बनकर रहे 14 वर्ष, उनके चरण पादुका को राज सिंहासन पर रह करके सेवक के रूप में रहे। राजा नहीं बनना चाहते थे, जबकि राज्य उनको मिला था। राजा बन सकते थे, लेकिन राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि रघुकुल या वैदिक संस्कृति है कि बड़ा भाई ही राजा होता है और छोटा भाई जो है सेवक होता है। लेकिन भगवान श्री राम कहे कि देखो, पिता का आदेश है, पिता के आदेश का पालन करना भी धर्म है। अगर पिता के आदेश का मैं पालन नहीं करूंगा तो ये भी राजधर्म, वेद धर्म, लोक धर्म का ह्रास होगा, इसलिए आप राजा रहो, मैं 14 वर्ष व्यतीत करने के बाद पुनः आऊंगा। जैसे जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को जो प्रसन्न कर लेता है, या अपने पितरों को, अपने पिता को प्रसन्न कर लेता है, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं धर्म पूर्वक। जैसे परशुराम जो है अपने पिता के आदेश से अपने मां को काट दिए, पिताजी कहे कि मां को काट दो, क्योंकि बहुत जघन्य अपराध है, पिताजी के आदेश से काट दिए। परशुराम जानते थे कि हमारे पिताजी सक्षम हैं, अगर मैं मार सक, उनका आदेश है मारने का तो मुझे मारना है। मारने के बाद उनके पिताजी प्रसन्न हो गए, बोले कि वर मांगो, क्या क्या तुम वर चाहते हो? तो परशुराम कहे कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मां को पुनः जीवित कर दीजिए। जीवित कर दिए। देवव्रत भीष्म अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए भयानक प्रतिज्ञा लिए, विचार नहीं किए कि पिताजी तो अभी शादी किए थे, शांतनु की शादी गंगा से हुई थी, कई पुत्र थे, लेकिन पिताजी के मनोभाव को समझ करके, देखिए हमारे पिताजी सत्यवती से शादी करना चाहते हैं, तो पिताजी से विचार विमर्श नहीं कहे, विचार विमर्श नहीं किए कि आप क्यों शादी करना चाहते हैं, उनको मनाने के लिए नहीं गए कि अब मत शादी कीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, अब मैं शादी करने के लायक हो गया हूं। आपको मेरी शादी करने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आप ही शादी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। नहीं, वो कहे कि नहीं, पिताजी की प्रसन्नता के लिए वो गए सत्यवती के पिता के पास, कहे कि हमारे पिता की इच्छा है तो आप अपनी पुत्री को दे दो, शादी कर दो। का पिता कहा कि नहीं, आप उनके पुत्र हो तो हमारी पुत्री तो दासी की तरह रहेगी, और उससे जो पुत्र होंगे तुम्हारे दास की तरह रहेंगे, तो राज्य सम्मान के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। अगर राजा से विवाह करना है तो यह शर्त है कि हमारी पुत्री का ही पुत्र राजा होना चाहिए। तो देवव्रत कहे कि ठीक है, आपकी पुत्री से जो संतान होगी वही राजा होंगे। बोले कि नहीं नहीं, आप युवक हो, आपकी भी शादी होगी, आपसे भी पुत्र होंगे, तो फिर वैधानिक अड़चन हो जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, या जीवन शादी नहीं करूंगा, रास्ता पूरा साफ हो जाएगा, तुम्हारे पुत्री से जो संतान होंगे वही राजा होंगे। तो उनके पिता यह सुन करके बहुत प्रसन्न हुए शांतनु, और देवता भी बहुत प्रसन्न हुए, भीष्म ये हुई, इसलिए आगे चलकर उनका नाम हुआ देवव्रत भीष्म। माने भयंकर प्रतिज्ञा किए थे अपने पिता के प्रसन्नता के लिए, और पिताजी भी इतने प्रसन्न हुए कि देवव्रत को आशीर्वाद दिए कि पुत्र तुमने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया है तो मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु, बिना इच्छा के तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अगर चाहोगे मरना तभी मरोगे, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूं, इच्छा मृत्यु का वरदान दिए। इसलिए जब भीष्म पितामह बाण शैया पर थे तो अपने शरीर को रखे रहे, जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब शरीर छोड़े, उनकी इच्छा के अनुसार मृत्यु हुई। अगर नहीं चाहते तो नहीं मरते हो, मृत्यु को अपने मुट्ठी में रख लिए थे, मृत्यु उनको नहीं मार सकती है। तो इस श्लोक में मुख्य बातें यह है कि भगवान को प्रसन्न करना, मतलब आचार्य परंपरा से कोई आचार्यों का अनुसरण करता है, जैसे प्रचेताओं ने रुद्र गीत के द्वारा शिव जी ने जो उपदेश दिया था उसके आधार पर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और भगवान विष्णु अष्ट भुजाओं में, अष्ट भुजाधारी, आठ भुजाओं में अलग अलग आयु था, शंख चक्र गदा पद्म। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि और चार भुजा भगवान क्यों धारण किए, उसमें क्या क्या आयु था, तो सारंग धनुष था, बाण था, और सर्प था, और क्या था, अंकुश था। ऐसे भगवान मूल रूप में द्विभुज हैं, लेकिन विष्णु कभी कभी चतुर्भुज रूप में थे, भगवान कृष्ण भी चतुर्भुज होते हैं, कभी कभी अष्टभुजा भी धारण करते हैं, भगवान कृष्ण भी कभी कभी अष्टभुजा धारण करते थे। जैसे जब भीम अश्वत्थामा का वध करने जा रहे थे तो उस समय भगवान अष्टभुजा धारण किए थे, अष्टभुजा धारण कर लिए भीम को रोकने के लिए और द्रौपदी को समझाने के लिए। तो भगवान के पास तो असंख्य भुजा है, अनेक बाहु दर्भक्त्र नेत्रम, भगवान के पास असंख्य भुजाएं हैं, असंख्य मुख है, असंख्य नेत्र है, असंख्य पेट भी है, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, भगवान का पेट भी एक नहीं, उदर अनेक उदर है, अनेक बाहु हैं। अगर भगवान आठ भुजा धारण करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है, अनेक मुख भी हैं। तो भगवान यहां आचार्य शिव जी परम आचार्य हैं, ब्रह्मा परम आचार्य हैं, और भी अनुवर्ती या पूर्ववर्ती जो आचार्य होते हैं, आचार्य भगवान के साक्षात्कार कराने में सक्षम होते हैं। जो आचार्यों का अनुशीलन करता है तो वो भगवान की भक्ति सरल हो जाती है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग अपने मन से करते हैं तो उसमें कठिनाई आती है। सर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन के परंपरा में अगर कोई भगवद गीता को समझना चाहता है तो सरल है, कोई अपने लौकिक विद्वता से भगवद गीता को समझना चाहता है तो कठिन है, वो नहीं समझ सकता है भक्त के विधि से। ऐसे तो बड़े बड़े विद्वान हैं लेकिन भगवद गीता का अर्थ उनको नहीं आता है, भगवद गीता की व्याख्या उल्टा ढंग से करते हैं। लेकिन जो अर्जुन के निर्णयों के अनुसार चलता है तो भगवद गीता के रहस्य को समझ जाता है। इसलिए गुरु परंपरा से, आचार्य परंपरा से, क्षत्रिय परंपरा से या शास्त्र के परंपरा से जो भी भक्ति में अग्रसर होता है तो मार्ग सरल हो जाता है, भगवान उसमें जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। समय हो गया है, अब यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।